तं सहगणाधिनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता शिवशाखान्वितंश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नितिरामिणि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम अच्छा आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं हमने अभी तक कौन कौन सी क्वालिटीज डिस्कस की हैं? किसी को याद है क्या क्या डिस्कस किया हमने? अभी तक चार क्वालिटीज डिस्कस हुई है, कौन कौन सी है? कोई भी एक एक क्वालिटी भी बता सकते हैं तो भी चलेगा। दिव्यराज प्रभु, कोई एक क्वालिटी आपको याद है जो हमने डिस्कस किया? यस हाँ,
मर्सीफुल होना प्रभु जी,
क्या? मर्सीफुल,
मर्सीफुल।
या मर्सीफुल। ओके, मर्सीफुल पहली क्वालिटी थी, नाइस। और कोई क्वालिटी दिव्यराज प्रभु आप कुछ बोलना चाहते थे ना? इक्वल टू एवरीवन, सभी के लिए समान होते हैं, सम। ओके, और कोई क्वालिटी? चार में से दो क्वालिटी बता दी आपने, दो बाकी है।
सत्यसार,
सत्य सार, हाँ, हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य का साथ देते हैं। लास्ट
समान,
समान तो बता दिया। अकृत द्रोह, अकृत द्रोह का मतलब कभी किसी से उसका द्रोह नहीं होता है, फाइट नहीं होता है किसी के साथ, मतलब किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं होता। तो आज हमारा पांचवा क्वालिटी है, पांचवा क्वालिटी का मीनिंग है निर्दोष। निर्दोष मीन्स उस वैष्णव का कोई दोष नहीं होता है, एक भक्त फॉल्टलेस। ये प्रश्न आता है कि फॉल्टलेस कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में इस तरह से आता है कि मनुष्य जो, हर मनुष्य गलती करता है, टू एर इज ह्यूमन, ऐसा इंग्लिश में आता है। तो फिर ये प्रश्न आएगा नेचुरली कि कोई व्यक्ति कैसे फॉल्टलेस हो सकता है, कोई व्यक्ति कैसे क्लेम कर सकता है कि उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। तो अपना माइक्रोफोन म्यूट कर सकते हैं साउंड, जिसके बीच में आवाज नहीं है। तो भगवत गीता में 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं, 14 चैप्टर 26 वर्स, कि जो व्यक्ति उनके अपनी बॉडी माइंड और वर्ड से पूरी तरह से शुद्ध भक्ति करता है वो तीन गुणों के प्रभाव से बाहर चला जाता है। सगुणान समति इत्यादि, तीनों गुणों के प्रभाव से बाहर आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अपने काया मतलब बॉडी, अपने मन और अपनी वाणी से हमेशा भगवान की सेवा करता है, भगवान की इच्छा को पूरा करता है, भगवान के मैसेज को रिपीट करता है, वो व्यक्ति फॉल्टलेस होता है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं। इवन सत्य सार की डेफिनेशन में भी इस तरह से हमने देखा था कि जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता है वो हमेशा सत्य बोलता है। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी एक उनकी लाइफ से एक एग्जाम्पल बताते हैं। महाराज बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको हमेशा इच्छा होती थी, उनको कुछ लोगों ने बताया था, जब वो छोटे थे तो उनको किसी ने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक कुछ नहीं बोलता है तो वो व्यक्ति फिर 12 साल बाद वाक सिद्ध बन जाता है, मतलब वो जो बोलता है वो सही हो जाता है। अगर कोई 12 साल तक मौन रहता है तो वो व्यक्ति जो बोलता है उसके बाद वो सही हो जाता है, उसकी वाणी में सिद्धि आ जाती है। तो महाराज जब छोटे थे तब उनको इच्छा होती थी कि मैं 12 साल तक मौन रखूंगा, उसके बाद मैं वाक सिद्ध बन जाऊंगा। फिर तो महाराज जब इस्कॉन के संपर्क में आए धीरे धीरे, उस समय तो मौन नहीं रख पाए, इस्कॉन के संपर्क में आए तब उनको ये कॉन्सेप्ट पता चला कि एक्चुअली हमेशा सत्य बोलने के लिए 12 साल तक मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमेशा कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो हमेशा सत्य बोलेंगे, तो अलग से मौन धारण करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में बोलता है, अपने अपनी वाणी से कृष्ण की सेवा करता है, तो वो व्यक्ति हमेशा सत्य सार रहता है, हमेशा सत्य बोलता है। तो इसी तरह से जो कृष्ण की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, कृष्ण के मैसेज को जो लोग दे रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। दैट मीन्स पूरी तरह से जो समर्पित भक्त हैं, आत्मसमर्पित भक्त हैं, जो कि बहुत एडवांस डिवोटीज हैं, बहुत हाई क्लास डिवोटीज हैं, उनके लिए ये बात है। अन्यथा जब हम साधना करते हैं तो हमसे मिस्टेक्स तो होते हैं, गलतियां भी होती हैं, बट तब भी जो बहुत एडवांस स्तर पे होते हैं उनकी गलतियों को नहीं देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उनकी गलतियों को, भक्तों के अंदर अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो जो फॉल्ट है वो उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन के उनके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे चंद्रमा जब पूरी तरह से आकाश में रहता है, फुल मून, जब चंद्रमा फुल मून रहता है पूर्णिमा के दिन, तब भी चंद्रमा के अंदर हम देखते हैं कुछ कुछ तो दाग दिखाई देते, परंतु वो दाग चंद्रमा की प्रकाश को कम नहीं करते, चंद्रमा की रोशनी को कम नहीं कर सकते। तो इसी तरह से बहुत एडवांस भक्त जो है, उसके हो सकता है उसके हमें कुछ कुछ फॉल्ट दिखाई दें, बट वो फॉल्ट से उसकी गरिमा कुछ कम नहीं होती है, उस व्यक्ति के जो महानता है वो कम नहीं होती है। उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा की रोशनी उसके ऊपर जो दाग है उससे कम नहीं होती। पूर्ण चंद्रमा के नाम से बहुत भगवान की लीलाएं भी बहुत सारी हैं। भगवान कृष्ण पूर्ण चंद्रमा के नाम से उनकी एक लीला मुझे हमेशा याद आती है। ये लीला परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने लंदन में एक लेक्चर में बताई थी, आप में से कई लोगों ने सुनी भी होगी शायद। तो उसमें भगवान कृष्ण एक बार यशोदा माँ और बाकी गोपियां जो थी वो आंगन में बैठी हुई कार्य कर रही थी, शाम का रात का समय था, और भगवान कृष्ण पीछे से आते हैं, और पीछे से आके यशोदा माँ के, जैसे माँ जब बैठी रहती तो पीछे से आके बच्चा उनको पीछे से पकड़ लेता है, तो उसी तरह से वो माँ को पीछे से पकड़ते हैं और फिर यशोदा माँ उनको आगे बुलाती हैं, और फिर दूसरी गोपियां भी उनसे बात करने लगती हैं। तो भगवान कृष्ण जब पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं, पूर्णिमा का दिन था उस दिन, पूर्ण चंद्रमा को देख के भगवान इच्छा करते हैं कि, भगवान पूछते हैं कि ये क्या है, कौन सी चीज है। तो कुछ गोपियां बोलती हैं कि वो एक्चुअली बटर है, मक्खन है। तो भगवान जैसे ही बोलते हैं कि मक्खन है, जैसे ही उनको पता चलता है कि मक्खन है, तो तुरंत बोलते हैं मैं वो मक्खन खाना चाहता हूँ, मेरे लिए वो मक्खन लेके आई। तो अभी मुसीबत हो जाती है, मक्खन कैसे लाएंगे। तो उसी समय दूसरी गोपी रहती है, वो दूसरी गोपी बोलती है नहीं, वो मक्खन नहीं है, वो एक हंस है, राजहंस है, और राजहंस आकाश में उड़ रहा है, पूरा नीला आकाश है उसमें वो हंस उड़ रहा है। तो कृष्ण, फिर कृष्ण छोटे से रहते हैं, ये लीला ऑलमोस्ट करीब तो भगवान जब 5 6 साल के थे, 5 साल के थे तब की लीला है। तो भगवान बोलते हैं कि वो हंस, इसके पहले वो जमीन पे उतरे, मैं उस हंस को पाना चाहता हूँ, उसको मेरे लिए लेके आइए चाहे कुछ भी हो। तो यशोदा समझ जाती है कि अभी उनको पिक्चर में आना पड़ेगा, गोपियां हैंडल नहीं कर पाएंगी भगवान को। तो यशोदा आके कृष्ण को बोलती है नहीं, वो मक्खन ही है, परंतु उस मक्खन के अंदर पॉइजन है, वो जो बीच में काले काले आपको दाग दिखाई दे रहे हैं ना, वो जहर है, तो वो जहर वाला मक्खन आपको नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से यशोदा माँ कृष्ण को बोलते हैं। तो नया दूसरा प्रश्न आता है कृष्ण को कि मक्खन में जहर कैसे आ गया। तो यशोदा माँ अभी स्टोरी सुनाना चालू करती है। यशोदा बोलती है देखो मैं सुनाती हूँ स्टोरी, परंतु बीच में तुम डिस्टर्ब मत करना, पूरी स्टोरी सुनना। तो वो बताते हैं कि एक बार एक समुद्र था, दूध का समुद्र था, और उस दूध के समुद्र में देवता और राक्षस दोनों एक दूसरे से, दोनों देवता और राक्षस एक दूसरे से समुद्र मंथन के बारे में, समुद्र मंथन की लीला वो बताना चालू करती हैं। तो भगवान कृष्ण का पहला ही प्रश्न आता है कि इतना बड़ा दूध का समुद्र बनाने के लिए कितने गाय एक साथ आई थी। शिवानंतु भाई बोल, शिवानंतु
यस
तो जस्ट 1 मिनट, भक्ति पे महाराज का कॉल आ रहा है, मैं जस्ट उनका
प्रोजी।
कॉल अटेंड करके ज्वाइन करता हूँ,
ओके
उनका मिस्टर पीछे से कॉल आ रहा है।
यस सर।
ठीक है अभी सॉरी एक्चुअली बीच में महाराज का कुछ था, उनको कुछ आवश्यकता थी। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, यशोदा माँ ने सुनाना चालू किया था कि समुद्र मंथन की लीला। तो कृष्ण का सबसे पहला प्रश्न आता है कि कितनी सारी गाय मिली थी उस समुद्र मंथन, इतना बड़ा दूध का समुद्र बनाने के लिए कितनी गायों की जरूरत पड़ी थी, ये प्रश्न कृष्ण पूछते हैं। तो यशोदा बोलते हैं कि नहीं नहीं उस समुद्र को बनाने के लिए गाय की जरूरत नहीं पड़ी थी। कृष्ण बोलते नहीं भैया आप झूठ बोल रहे हैं, ये बिना गाय के दूध का समुद्र कैसे बन सकता है, दूध कैसे निकलेगा बिना गाय के। तो यशोदा बोलते देखो डिस्टर्ब मत करो, मैंने बोला था कहानी ठीक से सुनना, जिस भगवान ने गाय बनाई वो, जिस भगवान ने गाय बनाई है, जिस भगवान ने गाय के अंदर दूध दिया है, वो भगवान अलग से दूध का समुद्र क्यों नहीं बना सकते। तो कृष्ण बोलते हैं हाँ हाँ ये तो लॉजिकल बात है, ठीक है आगे कहानी सुनाइए। तो इस प्रकार से देवता और दानव फिर समुद्र मंथन चालू करते हैं और फिर जहर निकलता है। यशोदा बोलती है कि फिर जहर निकला। तो फिर कृष्ण प्रश्न पूछते हैं कि मैया इतने दिन से मैं आपको देख रहा हूँ कि आप दूध को मथती हो, आज तक तो जहर निकला नहीं, अभी ये दूध में से जहर कैसे निकल आया, शायद आप झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा बोलते हैं नहीं 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 वो जहर निकल आया somehow, इस तरह से था उसमें जहर निकल के आया। और फिर यशोदा बोलते हैं अभी तुम डिस्टर्ब करोगे तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी नहीं ठीक से। तो फिर आगे सुना दी कि फिर जहर निकला, फिर सांपों ने, भगवान शिव ने उस जहर को पिया, फिर सांपों ने उस जहर को पिया, ऐसा सुनाते सुनाते कृष्ण सुनते रहते हैं और यशोदा माँ समुद्र मंथन की लीला और डिटेल में सुनाने लगती है। और सुनते सुनते कृष्ण को नींद आने लगती है और उनको कमरे के अंदर ले जाके सुला देती है। और दूसरे दिन सुबह जब उठते हैं तो कृष्ण बोलते हैं मैया आपने मुझे धोखा दे दिया। तो मैया बोलते हैं जाओ जाओ अभी भी वो केक चंद्र आकाश में है, अगर दिखे तो खा लेना। तो दौड़ के जाते हैं तो सुबह के समय तो चंद्रमा कहाँ दिखेगा। तो फिर भगवान कृष्ण के पास, भगवान कृष्ण भूल जाते हैं धीरे धीरे उस लीला को और फिर दूसरी लीला चालू होती है। ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन में बहुत लंबी लीला है, उसमें से केवल एक पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ये जो जो चंद्रमा से रिलेटेड है। तो जब पूर्ण चंद्रमा में जब दाग पाए जाते हैं तो भी उसकी रोशनी कम नहीं होती है। इसी तरह से कोई भक्त अगर बहुत एडवांस भक्ति कर रहा है, भक्ति की प्रोसेस में लगा हुआ है, तो उसके अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है, फॉल्ट है, तो उसको फॉल्ट जैसा नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के प्रति उसका जो प्रेम है वो उसका उसकी संपत्ति है, वो उसकी मेन संपत्ति है, उसी के आधार पर उस भक्ति की गणना होती है। और जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई भी गलती नहीं होगी। एकदम शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो बहुत एडवांस होते हैं, परंतु जब तक कोई पूरी तरह से शुद्ध नहीं तब तक हम उसको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पूरी तरह से निर्दोष होगा, परंतु उसकी गलतियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए प्रभुपाद भी बताते हैं कि कोई भक्त भगवान की सेवा में लगा है, अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती होता भी है तो वो गलती को टॉलरेट करके उसको देखना चाहिए, उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए, उसको मतलब उस भक्त को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आप इस तरह से कैसे है उसके साथ। तो इसलिए भक्त को निर्दोष बोला जाता है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता है। और अगर कोई भक्त एक्सीडेंटली शुद्ध भक्ति के स्टेज से नीचे आता है या शुद्ध भक्ति तक नहीं पहुंचता है तब भी उसको सेंटली साधु बोला जाता है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं अपि चेत शुद्धाचार्यो भजते माम अनन्य भाव साधु देव समन्तव्य सम्यग् विशुतो हि सः। भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पास्ट एक्टिविटी के कारण या कुछ गलती के कारण कभी कभी उसका व्यवहार गलत होता है या कुछ कार्य करता है, परंतु तब भी वो भक्ति में लगा हुआ है तो इवेंचुअली उसके वो सारी गंदगी है जो भी वस्तुएं हैं वो सही हो जाएंगी। इसलिए उस भक्त को बार बार दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर कीचड़ में डूबा हुआ है परंतु साथ में वो सावर के नीचे नहा रहा है, साबुन लगा के सफाई कर रहा है, तो उस समय हम ये नहीं बोलते कि देखो तुम्हारे शरीर में वहां गंदगी लगी, यहाँ गंदगी लगी है, देखो कितनी गंदगी लगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी के नीचे ही है, वो पानी उसको साफ कर रहा है और इवेंचुअली वो साफ हो जाएगा। तो जबरदस्ती उसको उसका दोष देख के हम अपराध करते हैं, हम अपनी भक्ति में नीचे चले जाते हैं। इसलिए भक्तों के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए और इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो भक्ति में लगा है तब तक छोटी मोटी गलतियां जो है वो इग्नोर करना अच्छा है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं हो, बहुत बड़ा फॉल्ट होता है तो ऑब्वियसली भक्तों उनको पनिशमेंट दिया जाता है सीनियर्स की तरफ से, परंतु इन जनरल हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बार बार मानसिक अपराध नहीं करें, मन से उनके बारे में बुरा मत सोचें। और भक्त की, भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा है, सेवा करने की इच्छा और शुद्धता जो है वो इतनी ज्यादा महान है कि उस इच्छा के कारण उसके जितने भी फॉल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो इच्छा उस फॉल्स पे ज्यादा भारी है। जैसे आपने देखा था जब सत्यभामा के पास गए थे भगवान कृष्ण को, तराजू पे तौल दिया था उन्होंने, तो सारी धन दौलत एक तराजू पे रखी थी, भगवान दूसरे तराजू पे रखे थे, तब भी भगवान भारी थे। फिर रुक्मिणी देवी ने आके सारे गहने को हटाया, वो केवल तुलसी को रखा था, तो तुलसी महारानी की भक्ति जो थी वो बाकी सब चीजों से भारी थी। इसी तरह से कोई भक्त अगर भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए तैयार है कि मैं किसी भी कीमत पे भगवान की सेवा करूंगा, किसी भी हद तक जाके करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई हो जीवन में, चाहे मैं कहे कितना भी मेरे साथ कुछ भी हो, परंतु भगवान की सेवा करूंगा, तो उसकी ये इच्छा इतनी बड़ी है कि इस इच्छा के कारण उसके सारे के सारे फॉल्स नलीफाई हो जाते हैं, इवेंचुअली भगवान उसके सारे फॉल्स खत्म कर देते हैं इस इच्छा के कारण। तो कृष्ण की सेवा करने की इच्छा संसार सबसे बड़ी इच्छा है, उस इच्छा को हमें लाइफ टाइम कल्टिवेट करना चाहिए, और उस इच्छा को करने से हमारे फॉल्ट्स अपने आप एंड हो जाते हैं। जैसे ईसोप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, आई थिंक छठवें नंबर का श्लोक होगा, कि अगर शुद्ध भक्त के शरीर में कुछ बॉडीली डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं तो उसको उसी तरह से देखना चाहिए जैसे गंगा जल में भी, गंगा नदी में जाते हैं तो बरसात के समय हमें कई बार पानी गंदा दिखाई देता है, पानी के ऊपर कुछ गंदगी फोम या झाग जैसा दिखाई देता है, परंतु वो फोम या झाग गंगा जल को अफेक्ट नहीं करता, गंगा जल तब भी शुद्ध रहता है, वो सभी साधु उसमें जाके स्नान करते हैं। तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान वो गंगा जल के समान है, अगर गंगा जल के ऊपर जिस प्रकार से दोष दिखाई देता है परंतु वास्तविकता में दोष नहीं होता है, उसी तरह से शुद्ध भक्त के हो सकता है पर्सनैलिटी में बॉडीली डिफेक्ट दिखाई दे, परंतु उसको हमें इग्नोर करके आउटलुक डिफेक्ट्स को ओवरलुक करना चाहिए। शुद्ध भक्त का शरीर भी आध्यात्मिक होता है, दिव्य शरीर होता है उनका, क्योंकि एक बार प्रभुपाद से जब पूछा था कि प्रभुपाद आपका शरीर दिव्य है कि कैसा है, उनके शिष्य इस तरह से प्रश्न पूछते थे, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था लोहे का उदाहरण, लोहा जब आग में रखा रहता है तो आग बन जाता है। कोई अगर पूछे कि आग तो बन जाता है, जैसे लोहे को अगर जब आग में रखते हैं तो लोहा एकदम लाल लाल हो जाता है, लाल रोशनी आने लगती है उसको, तो कोई प्रश्न पूछेगा कि पर आग बन जाता है तब भी वो तो है तो लोहा, तो उससे प्रश्न करना चाहिए, अगर आपको लगता है लोहा तो छू के बताओ, तब समझ में आएगा कि लोहा है कि आग है। तो इसी तरह से शुद्ध भक्त का शरीर कृष्ण की सेवा भगवत सेवा करने से इतना ज्यादा आध्यात्मिक रूप से सरचार्ज हो जाता है कि उसको भौतिक नहीं माना जाता, फिर आध्यात्मिक माना जाता है। और उस केस में भी हो सकता है उसके शरीर में बीमारी आए या कभी उसको कुछ बॉडीली प्रॉब्लम हो, परंतु उससे ये मतलब नहीं निकलता कि उस भक्त की महत्ता कम हो गई, कि ये शुद्ध भक्त है तो इसलिए बीमार क्यों होगा, क्योंकि उसका शरीर भौतिक तत्वों से बना हुआ है, परंतु जिस प्रकार से लोहे के बना होने के बाद भी आग बन जाता है, उसी तरह से कृष्ण की सेवा में लगे रहने के कारण उसका शरीर दिव्य हो चुका है। तो इसलिए कभी अगर आध्यात्मिक गुरु बीमार होते हैं, उनको शारीरिक समस्या होती है, तो हमें अचंभा नहीं हो, अचंभा मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जब कोई भौतिक शरीर में है तो भौतिक शरीर की अपनी अपनी कंडीशनिंग है, लिमिटेशंस है, भौतिक नेचर का प्रभाव है, उसके कारण कई बार हो सकता है, परंतु उससे उनकी कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं आता, उनकी गरिमा कभी कम नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरे वैष्णवों के शरीर की निंदा करते हैं, शारीरिक डिफेक्ट्स जो उनके अंदर है उनकी निंदा करते हैं, वो भक्त अधार्मिक कार्य करते हैं, वो कार्य धार्मिक नहीं कहलाते हैं, क्योंकि ये उनके मटेरियल विजन से आते हैं, मटेरियल विजन मतलब उनका भौतिक दृष्टिकोण से ये चीजें आती, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो नहीं देख पाते इसलिए ये चीजें देखते हैं। जैसे कोई भक्त अगर संस्कृत का श्लोक बोलता है और नहीं बोल पाता है, तो हम संस्कृत ग्रामर में हो सकता है वो गलती करे, परंतु उस ग्रामर की गलती से हम ये नहीं बोल सकते कि वो भक्त नहीं, क्योंकि जैसे माता पिता जब बच्चे तुतला के बोलते हैं तब भी माता पिता खुश होते हैं, कई माता पिता आपने देखा होगा छोटे बच्चे कई बार वो जब छोटे होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, तो कुछ भी बोलते हैं, फिर माता पिता को लगता है ये तो प्रभुपाद बोल रहे हैं। एक बार मैं एक घर में गया, एक भक्त के घर पे, तो छोटा बच्चा कुछ कुछ तो बोला था, पू ऐसा कुछ बोल रहा था, उनके मदर ने बोला देखिए प्रभु जी ये प्रभुपाद बोल रहा, मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभुपाद बोल रहा, परंतु माता पिता को लगता है कि बच्चा बोलता है, तो बच्चे के तोतली आवाज से भी माता पिता खुश हो जाते हैं। तो अगर कोई भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, हो सकता है वो संस्कृत का श्लोक नहीं बोल पा रहा, परंतु उससे भगवान इस प्रकार से दुखी नहीं होते हैं कि नहीं ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान हृदय को देखते हैं और उसके अंदर जो सेवा करने का भाव है उसको देखते हैं। इनफैक्ट आध्यात्मिक गुरु भी, श्रील प्रभुपाद एक बार गायत्री ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु, बहुत इनिशियल शुरू में शिष्य थे, 1967 में ज्वाइन किए थे वो। तो प्रभुपाद जी ने उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, ब्राह्मण दीक्षा देने के बाद उनको गायत्री मंत्र और कुछ कुछ मंत्र दिए जाते हैं जप करने के, मतलब दिन में 3 टाइम संध्या के समय करने के लिए। तो प्रभुपाद पर्सनली अपने शिष्यों को बुला के मंत्र सिखाते थे। तो उनको जब बुलाया, उनका उनको संस्कृत का कोई नॉलेज नहीं था, उनके प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता था, तो प्रभुपाद उनको गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे, वो बाद में पीछे बोलते थे। प्रभुपाद ने प्रयास किया, 15-20 मिनट तक प्रयास किया, प्रभुपाद ने देखा इससे हो गई नहीं, तो प्रभुपाद ने बोला ये लिख के मैंने दे दिया है, जो समझ में आए बोलना, कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद ने बोला चलो तुमसे नहीं हो सकता, अभी जो हो वैसा करना। तो हालांकि ये सारी चीजें जरूरी है, संस्कृत भाषा बहुत जरूरी है, परंतु यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऐसा है कि इनकेस अगर कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है, उसका कैपेसिटी उतना नहीं है, या अज्ञानी है, या नॉलेज उतना नहीं है, तो उसका ही मतलब नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता। जैसे प्रभुपाद जी से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था, चाइनीज लोग या कोई और कोई एक देश के लोग कोई एक शब्द नहीं बोल पाते थे, तो प्रभुपाद ने बोला उससे कोई मतलब नहीं, वो भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो बॉडीली जो डिफेक्ट्स हैं, शरीर के जो डिफेक्ट्स हैं, वो आत्मा की प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करते, आध्यात्मिक स्थिति को अफेक्ट नहीं करते, ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर कोई भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहता है आध्यात्मिक गुरु के आदेश पे, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्ट है, क्योंकि संसार में कृष्ण को ग्लोरीफाई करने वाले कम लोग हैं, मतलब भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में सभी उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो भौतिक संसार में लोग ज्यादातर अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आई एम द बेस्ट, मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा हूँ, और उनको लगता है कृष्ण तो कोई साइड व्यक्ति है, मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, पूरी दुनिया में मैं सेंटर में हूँ, मैं जिस देश में हूँ वो देश इम्पोर्टेंट है, मैं जिस जाति में जन्म लिया वो जाति इम्पोर्टेंट है, मैंने जिस गुरु से दीक्षा ले लिया वो गुरु महान हो गया, और गुजराती को लगता है कि मैं गुजरात का हूँ इसलिए गुजरात बहुत अच्छा है, महाराष्ट्रियन को लगता है मैं महाराष्ट्र हूँ इसलिए महाराष्ट्र सबसे अच्छा है, इसी तरह से इंडियन को लगता है इंडिया सबसे अच्छा है, अमेरिकन को लगता है अमेरिका सबसे अच्छा है, तो इसमें सेंटर क्या है? सेंटर एक्चुअली वो देश नहीं है, कुछ भी नहीं, सेंटर हमें है, हमें लगता है कि हम समहाउ स्पेशल व्यक्ति हैं, इसलिए जो चीज हमसे कनेक्टेड है वो बहुत अच्छी है, और जो चीज हमसे कनेक्टेड नहीं है वो तो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें अच्छाई आएगी कैसे, क्योंकि वो मुझसे कनेक्टेड नहीं। सामान्यतः लोगों के अंदर यही विचार होता है, तो लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करने में इतने बिजी रहते हैं कि कृष्ण का याद ही नहीं आता कि कृष्ण को ग्लोरीफाई करना चाहिए, इसलिए जब कोई कृष्ण को ग्लोरीफाई करता है तो उसको सबसे ज्यादा अप्रिसिएट करना चाहिए कि कम से कम वो आगे बढ़ के वास्तविक रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी भक्त की गलती के समय अगर हम ये सोचेंगे कि वो भक्त कम से कम आगे जाने का प्रयास कर रहा है, तो हम एटलीस्ट उसको चिल्लाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कि संसार के हजारों लाखों करोड़ों लोगों से ज्यादा अच्छा है वो, कम से कम सही रास्ते पे आगे जाने का प्रयास करता है। उस भक्त की गलतियों पे उसको सुधारा जा सकता है, परंतु उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तुम तो यूजलेस हो, क्योंकि हर भक्त अपने आप में बहुत एक महान है, महान मतलब क्योंकि वो कृष्ण के रास्ते पे जा रहा है इसलिए वो अपने आप में महान है, संसार के कई लोगों से ज्यादा महान है। ऐसे शास्त्र जो कि भगवान के नाम, भगवान के रूप, गुण, लीला से भरे रहते हैं, वो शास्त्र भी दिव्य होते हैं भगवान के दिव्य स्वभाव के कारण, और ऐसे शास्त्र जब लोगों के जीवन में आते हैं, लोगों के संसार में आते हैं, तो उस संसार में क्रांति प्रदान करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने संस्कृत के शास्त्रों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, उसको पाश्चात्य देशों में ले गए, उसके कारण आध्यात्मिक क्रांति के जैसा आ गया। पिछले 50 साल में वैष्णवों की संख्या, वैष्णवों से पूरी धरती भर गई, जिन जिन देशों में वैष्णव आचार्य कभी गए नहीं होंगे पिछले पास्ट पूर्व काल में, उन सब देशों में अभी कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर हैं, लोग जप कर रहे हैं, भगवद गीता उन देशों में पहुंच चुकी है। तो जब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला से संबंधित शास्त्रों को जब बोला जाता है, तो संसार के जो दिग्भ्रमित लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका जीवन बदल जाता है, आध्यात्मिक क्रांति आ जाती है। और ऐसे शास्त्र भले ही हो सकता है उसमें कुछ ग्रामर हो लिखने में, प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि जब मैं ये इंग्लिश भाषा में लिख रहा हूँ तो चूंकि मैं तो इंडियन हूँ, तो ये नेचुरल है कि मैं इंग्लिश भाषा उतने अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा जितना आप लोग बोलते हैं अमेरिका में, तो नेचुरली उसमें मिस्टेक होंगी, हो सकता है ग्रामर की मिस्टेक हो, कुछ मिस्टेक हो, परंतु तब भी मुझे भरोसा है कि लोग इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब कभी इमरजेंसी होती है, प्रभुपाद उसमें उदाहरण देते हैं कि मान लो किसी के घर में आग लग जाती है और उसके बगल में एक पड़ोसी रहता है, तो पड़ोसी उसकी भाषा नहीं जानता है, परंतु जब वो व्यक्ति पड़ोसी को बुलाना जाएगा तो उस व्यक्ति के चेहरे को देख के समझ जाएगा पड़ोसी की कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो प्रभुपाद वो ही लिख रहे हैं कि ऑल दो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, परंतु ये इमरजेंसी कंडीशन है श्रीमद भागवत और भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दुनिया में पहुंचाने की। तो तब इसलिए मुझे आशा है कि लोग इसको स्वीकार करेंगे, भले ही उसके अंदर गलतियां हैं परंतु लोग स्वीकार करेंगे। तो कोई भी दिव्य शास्त्र भले ही कुछ में उसमें भौतिक गलतियां हों, परंतु तब भी साधुओं के द्वारा उसको ग्लोरीफाई, उसको प्रशंसा की जाती है। श्री प्रभुपाद ने जब सबसे पहला भागवतम लिखा था, फर्स्ट एडिशन भारत में लिखा था उन्होंने, बहुत कठिन सिचुएशन में वृंदावन में लिखते थे, फिर दिल्ली लेके जाते थे, प्रिंटिंग कराते थे और फिर पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, और क्योंकि अकेले थे, कोई संस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं थे, और खुद 65-70 साल के, तो बहुत कठिन सिचुएशन में उन्होंने भागवतम का पहला स्कंद लिखा था। जो पहला स्कंद अभी हम पढ़ते हैं वो प्रभुपाद ने भारत में लिखा था इस्कॉन बनाने के पहले, अमेरिका जाने के पहले। तो पैसा भी नहीं था उनके पास, सबसे पहले पैसा कलेक्ट करना, उसके बाद डिक्टेट करना, फिर टाइप करना, फिर प्रूफ रीडिंग करना, फिर लेके जाना, प्रिंट कराना, प्रिंटिंग का पैसा जुगाड़ करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सारा काम प्रभुपाद ने अकेले किया। बहुत कठिन सिचुएशन में भागवतम को लिखा गया था, और प्रभुपाद जानते भी थे कि अमेरिकन इंग्लिश के आधार पर अगर देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो दिखाई देंगी, ग्रामेटिकल गलतियां हो सकता है, स्पेलिंग की गलतियां हो सकती हैं, परंतु प्रभुपाद जो फिलोसफी था वो पूरी तरह से परफेक्ट था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ने जो बोला है वही फिलोसफी प्रभुपाद जी ने बताया था, इसलिए जो भी लोगों ने उसको सुना उन लोगों का जीवन बदल गया। जिनके हाथ में प्रभुपाद की पुस्तक गई भगवद गीता भागवतम, उन्होंने उस पुस्तक को खोल के देखा, उनकी लाइफ बदल गई, मटेरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट हो। हम सबके साथ भी ऐसे ही हुआ, प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे हाथ में आई उसके पहले हमारा जीवन का दृष्टिकोण अलग था, जब वो पुस्तकें हमने खोल के देखा, पढ़ना चालू किया, तब हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदल गया। अभी हम सोचते हैं तो हमें नेचुरल लगता है भक्ति करना, जैसे अभी मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कोई व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है कि भगवान नहीं, संसार किसी ने नहीं बनाया, मुझे लगता है ऐसा सोचना पागलपन है, जबकि पहले हम भी उसी कैटेगरी में थे, हम वही सब सोचते थे। तो ये इतना ज्यादा चेंज कैसे आया हमारी खुद की चेतना के अंदर, ये चेंज प्रभुपाद ने लेके आए, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने से ये चेंज आया हमारे अंदर। दैट मीन्स अगर उन पुस्तकों को हम दूसरे लोगों को भी पढ़ाएंगे तो जो चेंज हमारे अंदर आया वो चेंज दूसरे लोगों को भी अंदर अंदर भी आएगा। इसलिए जिसको भी हम मिलते हैं उसको प्रभुपाद की पुस्तकें हमें देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए पढ़ने के लिए। और इसीलिए प्रभुपाद उनके शिष्य बहुत खुश थे जब नए एडिशन आए और उसमें से टेक्निकल गलतियां निकल गई, परंतु उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पुराने एडिशन जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, नए एडिशन ज्यादा अच्छे, कभी भी ऐसा नहीं सोचा। अभी भी प्रभुपाद की ओरिजिनल बुक्स अभी भी सेल होती हैं, बीबीटी का एक एक पूरा कॉर्नर है, प्रभुपाद ने जो उस समय 1972 के पहले जो बुक्स लिखी हैं वो सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं, जो चाहे तो उसको भी खरीद के पढ़ सकता है। कभी भी उन बुक्स का प्रिंटिंग या सेलिंग बंद नहीं हुआ क्योंकि वो प्रभुपाद ने ओरिजिनली लिखा था, हो सकता है ग्रामर की मिस्टेक्स हो, परंतु तब भी वो उस उन्हीं बुक्स के द्वारा इस्कॉन के हजारों भक्त बने। तो अभी भी भक्ति वेदान बुक ट्रस्ट में वो बुक्स प्रिंट होती हैं, उनके पास रखी रहती हैं, सेल भी करते हैं वो, और वो सारे आइटम्स जो प्रभुपाद ने उस समय लिखे थे उनको अभी भी उनके शिष्य उतने ज्यादा खुशी से पढ़ते हैं। और वो गलतियां उन बुक्स में जो ग्रामेटिकल एरर हैं उन गलतियों से हमें पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद ने अकेले इतना सारा कार्य किया, कोई इनकम भी नहीं, कोई असिस्टेंस भी नहीं था, सब चीजों को देखना, वो सब चीजों को करते करते प्रभुपाद ने कार्य किया। तो इस प्रकार की गलतियों को हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे गंगा जल में अगर हम फोम देखते हैं, झाग देखते हैं, तो गंगा जल की महत्ता कम नहीं होती है। इसी तरह से वो बुक्स जो हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती हैं, परंतु वो बुक्स कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली, प्रभुपाद के शिष्यों को वो बुक्स कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। तो इसलिए हम श्योर हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं उसी में, इसलिए हम श्योर हैं कि अगर पूरा मानव समाज श्रीमद भागवतम को स्वागत करेगा, हो सकता है उसमें लिखने में कुछ गलतियां हो, परंतु अगर पूरा मानव समाज श्रीमद भागवतम को फॉलो करेगा तो पूरा मानव समाज लाभान्वित होगा। तो ये भक्त का निर्दोष गुण जो आता है ये तभी आता है जब भक्त पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगता है, क्योंकि जीव का वास्तविक नेचर है कृष्ण के सेवक के रूप में, कृष्ण के सेवक के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना। और जब कोई व्यक्ति इस रियलाइजेशन में मैच्योर हो जाता है तब व्यक्ति भगवान कृष्ण को ज्वाइन करता है आध्यात्मिक संसार में। तो इस भौतिक संसार के दो प्रकार के वो दिए गए हैं, दो प्रकार के तुलना कंपैरिजन भौतिक संसार का किया गया है। एक कंपैरिजन तो किया जाता है भौतिक संसार जेल के समान, वो कंपैरिजन हमने कई बार सुना है, भौतिक संसार जेल के समान है, और दूसरा कंपैरिजन प्रभुपाद जी कहीं कहते हैं कि भौतिक संसार एक बोर्डिंग स्कूल के समान है। जैसे बोर्डिंग स्कूल में बच्चा जाता है और उसको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जब जब पूरी तरह से वो ट्रेंड अप हो जाता है तब उस बच्चे को वापस घर भेजा जाता है। तो जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वो एक्चुअली अभी बोर्डिंग स्कूल में है, और इस्कॉन वो बोर्डिंग स्कूल का नाम है, इस्कॉन उस बोर्डिंग स्कूल का नाम है। उस इस्कॉन बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो भक्त हैं वो भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, और जब इस बोर्डिंग स्कूल में हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब हम अपने घर वापस चले जाएंगे, भगवत धाम वापस चले जाएंगे। इनफैक्ट मृत्यु के समय भगवान आके बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ाई की, तुम अच्छे से पास हो गए, और फिर भगवान हमें साथ में लेके जाएंगे। तो ये भौतिक संसार का दूसरा एस्पेक्ट है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए जेल के समान है, और जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं उनके लिए भौतिक संसार बोर्डिंग स्कूल जैसा हो जाता है, जहाँ पे हम ट्रेनिंग लेके अपने घर पे कैसे रहना है, कैसे अच्छे से जीवन व्यतीत करना है, उसकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे लेके तो भगवत धाम जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने समझाया बोर्डिंग स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल जेल का कॉन्सेप्ट जो है वो अभक्तों के लिए समझाया जाता है। तो इस ये हमारा टेस्ट चल रहा है, और डेथ के समय एग्जाम होगा, उस एग्जाम में पास हो जाएंगे तो भगवान के साथ हम आध्यात्मिक शरीर में भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करेंगे। और जब जब तक इस भौतिक संसार में हैं तब तक हम किस प्रकार से लिबरेट हो सकते हैं, तब तक भी हम लिबरेट रह सकते हैं अगर हम भगवान की सेवा करें पूरी तरह से, तब भी हम भौतिक संसार में भी रह के लिबरेट हो सकते हैं। तो हमें ये डिटरमाइन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवत भक्त की भक्ति के द्वारा वो व्यक्ति निर्दोष होता है, बाकी और कोई चीज के द्वारा निर्दोष नहीं होता है। और कोई व्यक्ति मूर्ख अगर है तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार कर सकता है, शुद्ध भक्त के ऊपर भी फॉल्ट देख सकता है, या अपने आप को बहुत शुद्ध भक्त मान सकता है, या दूसरे लोगों को धोखा भी दे सकता है, परंतु जो बुद्धिमान भक्त हैं वो ऐसी चीजों को पहचान जाते हैं। एक शुद्ध भक्त जो है, जो आध्यात्मिक गुरु के आदर्शों का सिंसियरली पालन कर रहा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं करेगा। और जो लोग असाधु लोग हैं अगर वो रहेंगे भी, तब भी वो व्यक्ति होल हार्टेडली आध्यात्मिक गुरु की सेवा और शुद्ध भक्त की सेवा करता रहेगा। और शुद्ध भक्तों के और शुद्ध लोग शुद्ध भक्तों और साधुओं के बीच में रहने पर रहने के कारण वो अपने आप को एडवांस करेगा, और दूसरे लोगों को भी कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व करेगा। कभी दूसरे के लिए दूसरे को वो एब्यूज नहीं करेगा, हमेशा वो दूसरे की सेवा करेगा, जो भी उसको पैसा प्राप्त होगा वो भगवान की सेवा में लगाएगा, और ऐसे भक्त के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं भक्ति जीवन में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर की एक डेफिनेशन आती है कि व्यक्ति क्या करता है जब वो अकेला रहता है, क्योंकि नॉर्मली हमारा एक्चुअल एटीट्यूड निकल के आता है जब हम अकेले रहते हैं, तब हमारे माइंड की सबसे लो डिजायर्स जो है वो निकल के आती है बाहर। तो भक्ति जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार से सेवा करें कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, तो हमें अपने चरित्र के ऊपर बहुत कार्य करना होगा, चरित्र को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। चरित्र के एक्चुअली आइडियल चार क्वालिफिकेशन है जो कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में दिया है। उसके अलावा चरित्र के भागवत में और भी डिस्क्रिप्शन दिए गए, हाउ टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। सामान्यतः भागवत में लिखा है कि ये तीन गुण जो है इसके द्वारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। एक गुण होता है नॉन एनवी, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है दूसरे के लिए, वो व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा ऐसा व्यक्ति जब भी कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे से कार्य करता है तो उसको प्रशंसा करता है। जैसे हमारे घर में देखें, अगर पिता जो है, मान लो पिता अगर थानेदार है और पुत्र जो है वो आईपीएस बन जाता है, तो पिता को ईर्ष्या नहीं होती है कि ये बेटा मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्योंकि उनका संबंध इस प्रकार से है, प्रेम का संबंध है। पिता खुश होता है कि देखो मैं तो केवल सब इंस्पेक्टर था परंतु मेरा बेटा आईपीएस बन गया। इसी अगर कोई भक्त बहुत अच्छी भक्ति करता है, बहुत आगे निकलता है, प्रचार अच्छे से करता है, तो हमें उस तरह से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि सभी हम एक ही फैमिली के लोग हैं, प्रभुपाद की फैमिली के लोग हैं। अगर एक ही फैमिली के अंदर हम ईर्ष्या करेंगे तो फिर संसार का भला कैसे होगा। तो जो नॉन एनवियस होते हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, ऐसे भक्तों का चरित्र बहुत अच्छा होता है। दूसरे जो भक्त इंटेग्रल होते हैं, इंटेग्रल मतलब जो वो बोलते हैं उसको जीवन में पालन करते हैं, केवल व्यासासन पे या कुर्सी के ऊपर बैठ के नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठ के नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उसको पालन भी करते हैं। ये बहुत कठिन गुण है, परंतु हम सभी को प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं भी इस कुंड में फ्री नहीं हूँ, क्योंकि हम सभी साधना भक्ति के स्टेज में हैं, परंतु हम अगर प्रयास करते हैं कि हम जितना हो सके उतना पालन करेंगे तो उससे लोगों का ट्रस्ट जनरेट होता है हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से जो भक्त है अगर वो चरित्र का पालन करता है, अच्छा चरित्र डेवलप करने का प्रयास करता है, भक्ति का अच्छा प्रयास करता है, तो इवेंचुअली भगवान उस पर कृपा करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी डिजायर सिंसियर है, सेवा करने की डिजायर उसकी बहुत सिंसियर है, तब भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और इवेंचुअली उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है इससे रिलेटेड?
हरे कृष्णा प्रभु जी। तीन क्वालिटी में से तीसरा क्वालिटी आपने बताया नहीं शायद।
तीन क्वालिटी कौन सी वाली?
नॉन एनवियस।
ओके ओके ओके। हाँ, तीसरा क्वालिटी होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब चीजों को इस प्रकार से डील करना है कि लोग ऑफेंड नहीं हो अननेसेसरी। लोगों को जैसे उसका सिंपल एग्जांपल, कई बार हमारे साथ होता है क्योंकि मैं मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हूँ, तो कई बार ये चीज होता है, दो दो भक्तों के बीच में कुछ लड़ाई होता है और दोनों भक्त आके अपना अपना पार्ट बताते हैं स्टोरी का। जब आप एक भक्त को सुनते हैं तो वो भक्त इस प्रकार से बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, दूसरे की सब कुछ गलती थी, और दूसरे भक्त को बिठा के सुनेंगे तो वो भी बताता है कि मेरी भी कोई गलती नहीं थी, इन्हीं की गलती थी। तो इस केस में अगर हम एक व्यक्ति की सुन के दूसरे को कुछ पनिशमेंट करते हैं तो वो इमेच्योरिटी कहलाती है। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि चीजों को डिटेल में जानना, उसके बाद डिसीजन लेना, और इमेच्योर मतलब हेस्टी डिसीजन, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में काम करना, उसको इमेच्योरिटी बोला जाता है। मैच्योरिटी इन डीलिंग्स भी कहलाता है कि इस प्रकार से हमारा व्यवहार हो कि लोग हमसे ऑफेंड नहीं हो, जैसे सेंसिटिव होना चाहिए। कई बार भक्तों में सेंसिटिविटी का प्रभाव होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं उनको समझ में नहीं आता कि दूसरे को खराब लग रहा होगा कि अच्छा लगा होगा, उसको इनसेंसिटिविटी बोलते हैं। उनसे पूछो तो बोलते नहीं नहीं तो मेरा नेचर ही इस तरह से, वो नेचर को बदलना चाहिए, भक्ति में आके नेचर को बदलना चाहिए। जैसे कुछ कुछ है, कई बार होता है लोग आजकल वांछा कल्प तो भी पूरा नहीं बोलते, वैष्णव प्रणाम करना है तो वांछा बोल देते, वांछा प्रभु। तो ये सब इमैच्योरिटी की चीजें हैं, शॉर्टकट के चक्कर में हम एक्सीडेंट की तरफ चले जाते हैं। लोग भक्ति में भी शॉर्टकट लेना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि भक्ति एक्चुअली ऑलरेडी शॉर्टेस्ट कट है, उससे ज्यादा शॉर्टकट लेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है इस प्रकार से व्यवहार करना कि सामने वाला ऑफेंड नहीं हो, या बहुत जल्दबाजी में कार्य नहीं करना, उसको मैच्योरिटी बोला जाता है। तो इंटेग्रिटी, मैच्योरिटी एंड नॉन एनवी, इनको बोला जाता है थ्री पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर। एक्चुअली हमारा एक पूरा वर्कशॉप है, इनमें से हर एक क्वालिटी को लेके उसके सिम्टम, उसके अपोजिट सिम्टम, उसको डेवलप कैसे करना चाहिए, उसके शास्त्र के एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, ये तीन क्वालिटीज के ऊपर एक पूरा वर्कशॉप है, करीब 7-8 घंटे का वर्कशॉप है, 8 घंटे तक चलता है वर्कशॉप। उसमें पोस्टर प्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। उस वर्कशॉप का नाम है थ्री पिलर्स ऑफ ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर। वो वर्कशॉप एक बार हमने सूरत में एक कॉलेज में किया था, MBA कॉलेज में, 4 घंटे का वर्कशॉप किया था। तो ये तीनों क्वालिटी एक्चुअली आप भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में दिया है, प्रभुपाद ने उनका सिम्टम दिया है, शास्त्र में उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। वो वर्कशॉप पता नहीं कब हम कर पाएंगे, क्योंकि एक एक घंटे की क्लास में करना तो कठिन होता है इस प्रकार के वर्कशॉप, उसके लिए एक दिन निकाल के बैठ के करना होगा, संडे को निकाल के तब डिस्कस करके कर सकते हैं। कभी फ्यूचर में ऐसा आएगा तो हम अनाउंस करेंगे, जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद या कोरोना खत्म होने के बाद, एक कोई एक संडे को लेके वर्कशॉप कर सकते हैं 2-4-5 घंटे का, उसमें बहुत कुछ बेनिफिट होगा, इन क्वालिटीज के बारे में जानने के लिए मिलेगा। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? नेक्स्ट क्वालिटी जो है वदान्य क्वालिटी है। वदान्य मतलब मैग्नेनिमस। ये क्वालिटी बहुत बड़ी है, ज्यादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट वीक इसको करें या कुछ कर लें, 10-15 मिनट इसको कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? वदान्य क्वालिटी को बोला जाता है मैग्नेनिमस। इसको हिंदी में और सिंपल टर्म में बोला जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा उदार होता है, उदार मतलब जिसका हृदय बहुत ब्रॉड माइंडेड, जो उदार होता है, ये भक्त का एक गुण है, भक्त उदार होते हैं। मैग्नेनिमस का डिक्शनरी डेफिनेशन है कि मन में और व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, दूसरों को क्षमा करने में बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, और लोगों की गलतियों को भुलाना चाहिए, और निस्वार्थ होना चाहिए, और बहुत ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब उसका स्वभाव बहुत लुभावना होना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को वदान्य बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु को जो प्रार्थना लिखी रूप गोस्वामी ने, उस प्रार्थना में उन्होंने इस प्रकार से बताया था, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसेन। उसमें महावदन्याय, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा उदार अवतार है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम इस प्रकार से बांट रहे हैं जैसे कि कोई इस तरह से किसी ने पहले बांटा नहीं। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट रहे, भगवान के कोई अवतार ने नहीं बांटा। जब भगवान कृष्ण आए थे तब भी बहुत कंडीशन रखे थे कि सर्वधर्मान परित्यज मां एकम शरणम भज, शरण में आओ तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। फिर और भी चीज कि जो मुझसे दोष करेगा उसको नहीं बताऊंगा, मैं उसको असुर की योनि में डालूंगा। भगवान गीता में बहुत स्ट्रांग स्ट्रांग बोलते हैं, तान अहम दुषितान क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामि अजस्त्र अशुभम आसुरेष्वेव योनिषु, मैं उसको आसुर योनि में डालूंगा, डालते ही रहूंगा, इस तरह से भगवान बहुत बोलते हैं। तो परंतु चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो कुछ नहीं बोलते, बोलते सीधे हरे कृष्ण महामंत्र ले लो। और शायद भगवान ने भगवदगीता में डिमांड किया था कि सरेंडर करो, तो लोग डर जाते हैं सरेंडर करने के लिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सरेंडर का भी नहीं डिमांड किया। उन्हें बोला पहले हरे कृष्ण महामंत्र ले लो, उसके बाद सरेंडर का सोचना, इसलिए ओपनली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसलिए उनको महावदन्याय बोला जाता है। सारे अवतारों को वदन्याय बोला जाता है, परंतु चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय बोला जाता है, क्योंकि उनसे ज्यादा म्यूनिफिसेंट कोई नहीं था, उनसे ज्यादा उदार कोई नहीं था। भगवान का नाम उन्होंने सेल किया और कोई कीमत नहीं लिया, केवल श्रद्धा के आधार पर उसको बेचा, बेचा नहीं बोल सकते हैं, नाम को उन्होंने लोगों को दिया। चैतन्य महाप्रभु एक जगह पे बोलते हैं कि मैं एक ऐसे मालिक, मैं एक ऐसे व्यक्ति के समान हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं और मैं लोगों को बांटना चाहता हूँ, फल फ्री में देना चाहता हूँ, तब भी मुझे ग्राहक नहीं मिल रहे। बनारस में जब चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो पूरा बनारस मायावादी सन्यासी से भरा होता है, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं कि मेरे पास इतने सारे फल हैं और बहुत मीठे मीठे फल हैं, उन सारे फलों को मैं फ्री में देना चाहता हूँ, परंतु बनारस में उसका कस्टमर नहीं, अभी मैं क्या करूँ, इन फल को वापस लेके कैसे जाऊँ, मैं इनको किसी को भी दे सकता हूँ, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो कृष्ण प्रेम उन्होंने इस प्रकार से बांटा, और आचार्य बताते हैं कि कृष्ण प्रेम केवल कृष्ण दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। ये सिंपल समझ भी सकते हैं, जैसे मैं अगर आज यहाँ पे मैं अगर खड़े होके बोलूं कि मैं हर भारत के हर गरीब को 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो सबको पता चल जाएगा ये तो गप्पे हाँक रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे। तो इसी तरह से जो कृष्ण प्रेम को दे रहा है, कम से कम कृष्ण प्रेम उसकी प्रॉपर्टी है तभी तो दे रहा है, नहीं तो कैसे देगा। और कृष्ण स्वयं कृष्ण प्रेम को अलाउ करेंगे तभी देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु अगर कृष्ण प्रेम को फ्रीली लोगों को दे रहे हैं, दैट मीन्स वो कृष्ण प्रेम के ओनर है, और कृष्ण प्रेम का ओनर कौन है, कृष्ण प्रेम का ओनर भगवान कृष्ण स्वयं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, तभी वो लोगों को कृष्ण प्रेम दे पा रहे हैं, नहीं तो किस किस अथॉरिटी पे वो कृष्ण प्रेम देंगे। हम जो बाकी आचार्य हैं वो कृष्ण प्रेम देते हैं चैतन्य महाप्रभु की अथॉरिटी पे, दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, इसलिए वो कृष्ण प्रेम लोगों को दे रहे हैं। और ऐसा है कि पंच तत्व का एक डिस्क्रिप्शन आता है चैतन्य चरितामृत में कि वो कृष्ण प्रेम को, कृष्ण प्रेम एक डब्बे में बंद था, उस डब्बे का ताला तोड़ के उन्होंने पूरे डब्बे को खोल दिया, और खोल के कृष्ण प्रेम उसमें से निकाल निकाल के फिर दे रहे हैं लोगों को, उछाल रहे हवा में, जिसको भी चाहिए उसको ले लो। और कृष्ण प्रेम का रूप है भगवान का नाम, हरे कृष्ण मंत्र जो करता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा उदार अवतार है, क्योंकि वो ऐसी वस्तु सभी को दे रहे हैं जो कि इसके पहले कभी नहीं दी गई थी। इस प्रार्थना के आधार पर चैतन्य महाप्रभु संसार भगवान के सारे अवतारों में सबसे ज्यादा उदार अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वो लव ऑफ गॉड सभी को प्रदान कर रहे हैं। सभी लोग इस संसार में एग्री हो सकते हैं कि संसार में परमानेंट चीज मिलना टेम्पररी चीज मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। संसार में टेम्पररी असिस्टमेंट जो है, जैसे एक उदाहरण आपने सुना भी होगा, प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते थे कि अगर एक गरीब, एक बहुत धनी व्यक्ति का अगर बच्चा खो जाए तो उस बच्चे को टेम्पररी हम रिलीफ दे सकते हैं, उसको टेम्पररी हम कुछ खिला सकते हैं और अलग अलग चीजें कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, परंतु वो सब टेम्पररी है, कुछ समय में खत्म हो जाएगा। परंतु उसको अपने पिता से मिला देंगे अगर, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह से जो भी लोग संसार, भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं, जो इस संसार में खोए हुए हैं, पागलों के समान घूम रहे हैं, उनको अगर हम भगवान कृष्ण जो कि उनके पिता हैं उनसे मिला देंगे, तो वो संसार में सबसे बड़ी उदारता का काम है। उससे बड़ी उदारता इस संसार में नहीं हो सकती कोई भी। एक खोए हुए बच्चे को पिता से मिलाना, उससे बड़ी उदारता इस संसार में नहीं हो सकती। तो वो उदार कार्य भगवान के भक्त करते हैं। भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो इस कार्य को करने के लिए अपना जीवन, पूरा जीवन समर्पित करते हैं, इसलिए उनको संसार में वदान्य बोला जाता है, उदार बोला जाता है, क्योंकि वो महावदान्य चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं और वो पूरे संसार को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उनको प्रसाद खिलाते हैं। जैसे कई बार हम जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, नगर संकीर्तन के लिए, तो कुछ लोग जो होते हैं वो किताब नहीं लेते हैं, उनको किताब नहीं लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं भगवान का नाम लीजिए, उनको बोलते हैं हरे कृष्ण हवन करिए, तो हरे कृष्ण हवन भी कई लोग करते हैं, फिर वो बोलते नहीं वो भी नहीं करेंगे। तो उनके लिए हमारा लास्ट हथियार होता है, ठीक है ये प्रसाद खाइए, प्रसाद के लिए कोई मना नहीं करता, ये मैंने देखा है। आप इस्कॉन का प्रसाद लेके जाएंगे तो चाहे कोई बुक नहीं ले, चाहे भगवान का नाम करने से मना कर दे, परंतु उसको प्रसाद देंगे तो वो खा लेगा। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ मुस्लिम लोग बोलते हैं नहीं प्रसाद भी नहीं खाएंगे, तो उनसे बोलते हैं ये तो प्रसाद नहीं खा, भोजन है, भोजन ले लीजिए, क्योंकि वो प्रसाद के नाम से नहीं लेते, तो उनको भोजन के रूप से खिलाते हैं, परंतु खाने से वो तो उनका बेनिफिट होने ही वाला है, खाने से उनके ऊपर प्रभाव आएगा। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त इतने उदार होते हैं कि किसी ना किसी तरह से उस व्यक्ति का भला करना चाहते हैं, उसके घर में घुस के उसका भला करना चाहते हैं। लोग मंदिर आना नहीं चाहते, इसलिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथ जी खुद ही बाहर निकल के जाते हैं, उनके भक्त हरिनाम संकीर्तन करके कॉलोनी कॉलोनी में जाते हैं, एक एक घर में जाके खटखटा के भगवान का नाम, भगवान की बुक्स देना चाहते हैं। तो ये सब भक्त की उदारता का लक्षण है कि जिसके कारण संसार को बेनिफिट होता है। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका, भारत से अमेरिका गए, उनके अमेरिका जाने के कारण कितने सारे लोगों का भला हुआ प्रभुपाद की उदारता के कारण। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे इसी सेक्शन को। और एक अनाउंसमेंट है, कल शाम को तो क्लास रहेगा, कल शाम को 7:30 पे क्लास, नहीं कल शाम को 7 बजे क्लास रहता है। नित्यानंद प्रभु का पानी हट्टी महोत्सव के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे, मैंने लास्ट वीक अनाउंस किया था। परसों शाम को एक स्पेशल क्लास है 5 बजे, श्रील प्रभुपाद की कथाओं के ऊपर, श्रील प्रभुपाद कथामृत के नाम से, 5 बजे से लेके 7 बजे तक। तो परसों शाम को, क्योंकि प्रभुपाद का अभी व्यास पूजा हुआ था कल, और कल वर्किंग डे भी था, तो मैंने सोचा वर्किंग डे पे क्लास करने की बजाय संडे को क्लास करेंगे। तो प्रभुपाद कथा हम उस दिन करेंगे, संडे को शाम को 5 से 7, और कल शाम को 7 बजे ये कथा होगा नित्यानंद प्रभु का पानीहाटी महोत्सव का। कल और परसों आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और भी जो भक्त हैं पहचान के उनको बता सकते हैं, कल शाम को 7 बजे और परसों 5 बजे, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी को? अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम एंड कर सकते हैं, कल मिलते हैं शाम को 7 बजे।